समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, ठीक 4:30 बज गए हैं और ये कार्यक्रम है आपके पसंदीदा कार्यक्रम परिक्रमा का। जी हाँ, इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह देश विदेश के समाचार होंगे, क्षेत्रीय संवाददाताओं से आपको रूबरू कराएंगे। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी हमारी नजर रहेगी, तो बहुत कुछ रहेगा आधे घंटे के संक में। आज मैं हूँ आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। हेलो शगुन।
Hello Priyanka and a very good afternoon to all our listeners who are tuned to Parikrama on 100.1 FM. Well, this is Shagun Chopra with Priyanka Arora and we have a lots of interesting stuff which is we have lined it up for you. We have a selection of news, we have our discussion segment Dateline India, we have reports, capsules, we'll be providing you business updates and a lot more. So make sure listeners you stick around with us till the end. We'll start with the headlines first, shall we?
Bilkul.
Prime Minister Narendra Modi to embark on a two-nation visit to Thailand and Sri Lanka next week to attend 6th BIMSTEC summit in Bangkok and hold bilateral talks with top leadership in Colombo.
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत अल्पसंख्यकों के साथ पाकिस्तान में हो रहे व्यवहार पर करीबी से नजर रख रहा है और इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहा है।
Australian Prime Minister Anthony Albanese calls general elections for 3rd of May.
म्यांमार में आए दो बड़े भूकंप में कई लोगों के मारे जाने की आशंका, बैंकॉक में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए।
And in tennis, Novak Djokovic scripts history at Miami Open by becoming the oldest player to reach ATP Masters 1000 semi-final. Now it's time for our segment Dateline India and today we are going to talk about WAVES. Well, WAVES is World Audio Visual and Entertainment Summit. This summit, World Audio Visual and Entertainment Summit, is a globally renowned summit. This puts the spotlight on India's thriving media and entertainment sector, which brings together international stakeholders, thought leaders and also creative visionaries to shape the future of the industry worldwide. And listeners, this WAVES 2025 will be held from 1st May to 4th May at Jio Convention Center in Mumbai.
जी हाँ, शिखर सम्मेलन में मीडिया और मनोरंजन उद्योग के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाले पूर्ण और समानांतर सत्र, सांस्कृतिक संध्याएं, प्रदर्शनियां, तकनीक और सांस्कृतिक प्रदर्शन, मास्टर क्लासेस, कार्यशालाएं और 3 दिवसीय मीडिया बाजार शामिल होंगे।
Well, WAVES is a groundbreaking event which is designed to propel India's media and entertainment industry to even greater heights. And, you know, India is positioned to become a prominent hub for high quality, cost effective content development. Content is the future, Priyanka.
बिल्कुल, और इस पर बहुत कह सकते हैं कि काम किया जा रहा है मजबूती से, प्रधानमंत्री खुद जोर दे रहे हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जिनमें बेहतरीन अभिनेता और निर्देशक से लेकर सक्षम तकनीशियन और एनिमेशन पेशेवर शामिल हैं। विश्व स्तरीय प्री और पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाएं, हमारे बैकअप ऑफिस संचालन क्षमता और ठोस नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलकर एक मजबूत तंत्र बनाती हैं जो भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को विश्व मंच पर सुदृढ़ करेंगी।
सो प्रियंका, दिस मीन्स दैट वेव्स विल बी अ की फोरम फॉर प्रमोटिंग डिस्कशंस, कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन इन द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। एंड दिस इवेंट विल ऑल्सो ब्रिंग टूगेदर इंडस्ट्री लीडर्स, स्टेक होल्डर्स, इनोवेटर्स, प्रोवाइडिंग द डिस्कशन अबाउट प्रोस्पेक्ट्स, अबाउट चैलेंजेस एंड ऑल्सो प्रमोटिंग ट्रेड टू इंडिया एंड इन्फ्लुएंस द सेक्टर्स फ्यूचर।
बिल्कुल, और देखा जाए तो जो वैश्विक मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में भारत एक प्रमुख उपभोक्ता निर्माता है, वेव्स इस जीवंत उद्योग और इसकी अपार संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। जो वेव्स है वो भारतीय और वैश्विक जो हितधारकों के बीच ज्ञान के आदान प्रदान, संवाद और सहयोग को बढ़ावा देता है। विचारों का ये परस्पर कह सकते हैं आदान प्रदान मीडिया और मनोरंजन जगत में नवाचार और विविधता को बढ़ावा देगा।
Definitely. And waves, not only this, it will connect the participants with the new markets and also diversify the revenue streams and pave the way for a stable and sustainable growth trajectory for the Indian media and entertainment sector. It also prioritizes job creation, skill development, and economic growth within the Indian media and entertainment industry. And this empowers the next generation of creators. As we told you, the content is the future. Content creators, they are coming up. The next generation of creators and entrepreneurs will also be, they will be empowered with
मतलब
this.
मतलब हर क्षेत्र को इससे फायदा पहुंचने
True.
वाला है. Technology, innovation, जो content writers, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका आने वाला है.
जी, overall media and entertainment
बिल्कुल.
industry is going to be
fulfilled. ये नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने तथा उद्योग जगत और इसकी जो कह सकते हैं प्रतिभाओं में उद्यमशीलता की भावना को प्रेरित करने के लिए एक मंच भी देगा.
And listeners, we'll also tell you that industries and sectors in focus, they include broadcasting, print media, television, radio, films, animation, visual effects, gaming, comics, sound and music industry, also advertising, digital media, social media platforms, generative AI, augmented reality, I'm not stopping till now, virtual reality and also extended reality. You name it, it's here.
बिल्कुल कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं है. हर क्षेत्र को इस पे शामिल किया गया है और इसका उद्देश्य यही है कि वेव्स को मीडिया और मनोरंजन के लिए प्रमुख वैश्विक मंच के रूप में स्थापित करना है, रचनात्मक अर्थव्यवस्था को गति देना है और बौद्धिक संपदा सृजन तथा नवाचार के केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को प्रदर्शित करना है. कितने सारे टैलेंट्स हैं हमारे जिनको मौका नहीं मिलता. तो इतने सारे प्लेटफॉर्म मिलेंगे और इतनी सारी उनके पास क्षेत्र होंगे तो आपके पास एक मौका मिलेगा कहीं ना कहीं.
जी, डेफिनेटली दे विल बी हियर इन द ग्लोबल स्टेज. दे विल बी ऑफरिंग देयर टैलेंट्स एंड डेफिनेटली द विजन हियर इज टू पोजीशन इंडिया एज एन अनपैरेलल्ड ग्लोबल पावर house in the dynamic media and entertainment landscape while setting new standards of creativity, innovation and also influence worldwide.
मिशन वेव्स के प्रीमियर प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैश्विक मीडिया और मनोरंजन के जो प्रमुखों को विशेष निवेश के अवसरों के साथ सशक्त बनाना है.
एंड ऑन वेंसडे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन कोलैबोरेशन विद द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड G.H. Raisoni कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट नागपुर सक्सेसफुली होस्टेड WAM और द वेव्स एनिमे एंड मांगा कॉन्टेस्ट नागपुर 2025 anime and manga contest. And this event is a part of Waves Create in India Challenge initiative and brought together some of Central India's most promising artists, animators, voice actors and cosplayers.
बिल्कुल, आपने मांगा का नाम लिया. ये कॉमिक्स को बोलते हैं जापानीज में.
right.
और एनिमे का आपने नाम लिया, उसको एनिमेशन का नाम है जापानीज में. तो अपने श्रोताओं को ये भी बता दें, वेव्स एनिमे और मांगा प्रतियोगिता ने एनिमे, मांगा और वेबटून में भारत की उभरती प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और संवारने के लिए अपने मिशन को जारी रखा, जिससे पहल आगे बढ़ी.
एंड प्रियंका, जापानीज एनिमे इज वेरी फेमस अमंग्स द नेक्स्ट जेनरेशन एंड द जेनरेशन जी एज वी कॉल एंड दिस इवेंट इट विटनेस एंथुजियास्टिक पार्टिसिपेशन अक्रॉस मल्टीपल कैटेगरीज इंक्लूडिंग दिस मांगा विच इज जापानीज स्टाइल कॉमिक्स एज यू राइटली टोल्ड वेबटून डिजिटल कॉमिक्स anime, which is Japanese style animation, voice acting showdown and cosplay competition. And also, do you know, the AVGC sector, where A stands for animation, V for visual effects, G for gaming and C for comics. And altogether, AVGC sector is becoming the future of the media and entertainment world.
बिल्कुल, बेशक भारत में आपने बाहुबली और RR जैसी फिल्में देखी हैं और ऐसी फिल्मों ने ऐतिहासिक तथा काल्पनिक विषयों को अगले स्तर तक जरूर पहुंचाया है, जिससे PS1 और कल्कि जैसी फिल्मों को प्रेरणा मिली है. द लायन किंग और अवतार जैसी फिल्मों ने एनिमेशन और इमर्सिव तकनीक की विशाल क्षमता को दिखाया है.
And the creation here knows no bounds. The immersive technologies like virtual reality, augmented reality and mixed reality and also 3D animation, these are the future of content creation.
अगर आप अल्फाज ही देखें, अगर आप इनकी टर्मिनोलॉजी देखें, तो हम बहुत कम ऐसे जो टर्म्स है जिससे हम जानते थे, हम रिलेट कर पाते थे, लेकिन अब इतनी टर्म्स आ रही हैं
वेरी कॉमन
सेक्टर में. तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत कॉमन हुआ है, ऐसे धीरे धीरे ये ऑगमेंटेड रियालिटी, मिक्स रियालिटी, 3D एनिमेशन, वर्चुअल रियलिटी और धीरे धीरे कॉमन होता जाएगा न्यू जनरेशन में, और आपको जो ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं इनको इससे आप अवगत होते रहेंगे। फिकी ईवाई 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया में एनीमे का दूसरा सबसे बड़ा प्रशंसक आधार है, और आने वाले वर्षों में एनीमे में रुचि की वैश्विक वृद्धि में 60% का योगदान करने की उम्मीद है।
वेरी राइटली सो, एनीमे इज वेरी वेरी पॉपुलर ओवर हियर इन इंडिया ऑल्सो, एंड ऑल्सो टू बूस्ट दिस प्रोग्रेस द यूनियन कैबिनेट हैज ऑल्सो अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एवीजीसी इन मुंबई लास्ट ईयर।
और फिल्मों, विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग कंटेंट की बढ़ती मांग के कारण भारत का एनिमेशन उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। इंटरनेट एक्सेस बढ़ने और दुनिया में सबसे कम डेटा दरों के साथ एवीजीसी सेक्टर तेजी से बढ़ने वाला है।
ऑल्सो जॉब अपॉर्चुनिटीज विल बी देयर अपॉर्चुनिटीज, इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट ओवर 5 लाख जॉब्स एंड ऑल्सो ऑफर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर सिमिलर टू आईआईटीज एंड आईआईएम्स, एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स विल गेन प्रैक्टिकल स्किल थ्रू हैंड्स ऑन लर्निंग एंड ऑल्सो internships, making them job ready right after the graduation. They won't be wondering what they have to do. They will be ready right after the graduation. It will also promote collaboration between governments, academia, and industries to drive research and innovation in immersive technologies.
और प्रधानमंत्री ने खुद मन की बात में भी animation कहा है कि क्रांति आएगी आने वाले वर्षों में।
वेल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एज यू राइटली टोल्ड, व्हाइल शेयरिंग हिज थॉट्स विद द पीपल ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड इन द मन की बात प्रोग्राम ऑन आकाशवाणी इन अक्टूबर लास्ट ईयर, हाइलाइटेड दैट इंडिया इज ऑन द वे टू अशरिंग इन अ न्यू रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमेशन। ही अर्ज्ड पीपल टू रिजोल्व टू मेक इंडिया अ ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस।
जिनकी दुनिया में मेड इन इंडिया और मेड बाय इंडियंस छाया हुआ है, स्पाइडरमैन हो या ट्रांसफॉर्मर्स, इन दोनों मूवीज में हरि नारायण राजीव के कंट्रीब्यूशन को लोगों ने खूब सराहा है। भारत के एनिमेशन स्टूडियो डिज्नी और वार्नर ब्रदर्स जैसी दुनिया के जाने माने प्रोडक्शन कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं।
श्री मोदी ने इस दौरान छोटा भीम, ढोलकपुर का ढोल और कृष्णा, हनुमान और मोटू पतलू जैसे दूसरे एनिमेटेड शोज का भी जिक्र किया, जिसके बारे में सुनकर हम भी पहले के वक्त में पहुंच गए हैं शगुन। और जब हम हनुमान सीरियल देखने के लिए टीवी के सामने बैठ जाया करते थे, चाहे वो छोटा भीम ही क्यों ना हो।
जी।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि एनिमेशन सेक्टर ने एक ऐसे उद्योग का रूप धारण कर लिया है जो अन्य उद्योगों को शक्ति प्रदान कर रहा है, जैसे कि वीआर टूरिज्म इन दिनों प्रसिद्ध हो रहा है, और उन्होंने युवाओं को अपनी रचनात्मकता का विस्तार करने के लिए प्रेरित किया। तो हम कहेंगे अपने जो युवा टैलेंट्स हैं, आगे आइए इनोवेशन के साथ, नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ, और जो भी आपके जहन में चल रहा है उसको जरूर उकेरिए।
देयर इज अ लॉट कमिंग फॉर देम, देयर इज अ लॉट टू लुक अहेड टू इन द फ्यूचर।
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से रूबरू होने का।
वेल, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द कुजू कल्चरल फेस्टिवल 2025। वेल, सिक्किम इज सेट टू सेलिब्रेट इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज ऑन अ ग्रैंड स्केल एज द कल्चर डिपार्टमेंट Government of Sikkim has officially announced this festival, Kuzu Cultural Festival 2025, as part of the state's 50 years of statehood celebration. The festival will take place from May 1 to May 10, 2025, and promises a vibrant display of diverse traditions, art and cuisine.
According to Deputy Director D.K. Ithenfa, multiple states from across India have already confirmed their participation in this cultural extravaganza.
We have many countries and states which will be participating for the festival. Like if you look at the states, then we have participation from Rajasthan and Punjab and other states which are yet to confirm. And for the international countries, then we have participation from Nepal and Bhutan, which is confirmed. And they will be showcasing their arts, culture and their cuisines. We also also have confirmation from the French Consulate General, who will be most probably be coming and participating in the festival. And after that, we also have a French Film Festival, which is scheduled to be held here. And it will be like a cinematic journey where we'll be showcasing the French movies. And we'll be we also have American military band, which has shown keen interest in coming to Sikkim and being a part of the festival. But that is subject to confirmation from the clearances, which will be obtained from the ministry. So those are the things which is scheduled to be held, and more such programs are lined up.
The Kuju Cultural Festival 2025 is expected to be a landmark event, bringing together different cultures on a single platform and strengthening Sikkim's position as a hub of heritage and diversity. Diliram Dulal, Akashwani News, Gangtok for Parikrama.
तो सिक्किम प्रकृति की गोद में बसा एक खूबसूरत राज्य है शगुन, और जहां बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी घाटियां, शांत झीलें हैं, और इसी जो पूर्वी हिमालय में बसा ये राज्य है। और इस तरफ ही अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं दार्जिलिंग की ओर। पूर्वी हिमालय के बादलों से घिरे पहाड़ों में एक वास्तविक जुरासिक पार्क आकार ले रहा है, लेकिन ये डायनासोर को वापस लाने के लिए नहीं बल्कि विलुप्त होने की गागार पर खड़े जीवों को बचाने के लिए। दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क में भारत का पहला फ्रोजन जू स्थापित किया गया है। पिछले सप्ताह हैदराबाद आधारित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी संस्थान तथा दार्जिलिंग पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क के संयुक्त तत्वाधान में इस फ्रोजन जू को स्थापित किया गया। इस बारे में खास रिपोर्ट है, अपने संवाददाता की सुनते हैं।
इस फ्रोजन जू में हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले दुर्लभ प्रजाति के जानवरों के डीएनए, स्पर्म, अंडे व इम्ब्रायो को संरक्षित किया जाएगा। आरंभ में इस फ्रोजन जू अर्थात बर्फ भरा जू में विशेषकर हिमालय में पाए जाने वाले दुर्लभ जानवर रेड पांडा के डीएनए, स्पर्म, स्टेम सेल सहित जेनेटिक मटेरियल को नाइट्रोजन से भरा स्टील के कंटेनर के अंदर -196 डिग्री सेल्सियस के तापमान में संरक्षित किया जाएगा। इस कंटेनर को -20 डिग्री सेल्सियस के तापमान में रखा जाएगा। इसे रेड पांडा प्रजाति के डीएनए, स्पर्म व स्टेम सेल सहित जेनेटिक पदार्थों को हजारों वर्षों तक संरक्षित रखा जा सकता है, जिससे इस दुर्लभ प्राणी के प्रजनन व नस्ल को पर्यावरण व जलवायु अनुरूप विकसित किया जा सकता है तथा इसे विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। देश का सबसे ऊंचे स्थान पर व समुद्र तल से करीब 7,050 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित तथा 67.8 एकड़ भूमि में फैला इस दार्जिलिंग चिड़ियाघर को हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले दुर्लभ प्रजाति जैसे रेड पांडा, हिम चिता, तिब्बती भेड़िया, मारखोर, मिसमी तनिक तथा काला हिरन आदि के प्रजाति को संरक्षित करने के लिए विकसित किया जा रहा है। स्मरण रहे, विश्व में कुल एक दर्जन के करीब फ्रोजन जू हैं, जिनका लक्ष्य विभिन्न जीव जंतुओं का संरक्षण करना तथा संसार से विलुप्त होने के कगार पर पहुंचे जीव जंतुओं को विलुप्त होने से बचाना है। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी करशंग।
Well, listeners, we are staying here in the colder regions again. Let's take you to Ladakh now.
Bilkul.
Ladakh is inching towards becoming the first TB-free union territory in India. The Union Territory Administration is working hard, putting all the efforts despite the geographical challenges and harsh winter to achieve the success of first TB-free union territory.
And bilkul, sarkar ne bhi lakshya rakha hai ki Bharat ko is saal tak tapedik mukt karna hai. To is disha mein sare raj केंद्र शासित प्रदेश भी आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। तो ये सुनते हैं लद्दाख से हमारे संवाददाता खुर्शीद की ये रिपोर्ट।
In Ladakh, 73 panchayats out of 96 sub layer district have been declared as TB free panchayat under the TB Mukt Panchayat Abhiyan, and these achievements have been recognized by the Ministry of Panchayat Raj, Government of India. Chief Medical Officer Lea, in a recent event organized on the eve of World TB Day, stated that the department is working day and night to achieve the target of 100% TB free Ladakh. Many steps have been taken in this regard, including the intensifying the testing of TB patients, door-to-door visits, and free treatment to the TB patient. Department is also conducting various awareness programs. Speaking with Parikarma, Ms. Dichan Spalzis, State Program Officer, National Tuberculosis Elimination Program, Ladakh, said that
the Union Territory of Ladakh has been actively participating in the TB Mukt Panchayat initiative under Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan. So this initiative encourages panchayats to take proactive steps in TB prevention, detection and treatment. We are one among the best performing Union Territories under the TB Mukt Panchayat. Our village will be declared TB Mukt if no new TB cases are reported in last 1 year and 100% of existing TB patients have completed their treatment. To facilitate this, we organize a lot of community awareness program, initiate a lot of screening and testing camps and ensuring that TB patients adhere to their treatment regimes through the community support and monitoring.
Ladakh was awarded with the best performing states and Union Territories under TB Mukt Panchayat category. Out of 98 panchayats in Kargil district, 40 panchayats have been declared TB free for the year 2024. For Parikarma, this is Khurshid Yusuf from Leh Ladakh.
Now let's find out what's happening in the business world. The benchmark domestic equity indices ended the last trading day of financial year 2024-25 with modest losses amid weak global cues. The 30 share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, dropped 192 points to close at 77,415. The National Stock Exchange, Nifty 50, lost 73 points to settle at 23,519. In the global crude market, Brent crude was trading nearly flat at $73.97 per barrel, and WTI crude was also trading nearly flat at $69.85 per barrel when the reports last came in. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading up at 89,120 rupees per 10 grams and silver 999 fine was also trading up at 101,750 rupees per kilogram when the reports last came in.
और अब शगुन चलते हैं खेल मैदान में और चलते हैं वहां जानते हैं वहां की हलचल. IPL क्रिकेट की सबसे पहले बात करें.
जी, first talking about cricket. In IPL T20 cricket, Royal Challengers Bangalore, this is today's match, will face host Chennai Super Kings this evening. The match will start from 7:30 p.m. and yesterday Lucknow Super Giants defeated hosts Sunrisers Hyderabad by 5 wickets.
तो रोमांचक मुकाबले जा रहे हैं IPL में. और अब स्क्वाश में आपको बताते हैं, अनाहत सिंह ने महिला और अभय सिंह ने पुरुष वर्ग में मुंबई में इंडियन ओपन 2025 के सिंगल्स में फाइनल में प्रवेश कर लिया है. अनाहत आज शाम फाइनल में हांगकांग की हेलेन टैंग के साथ खेलेंगी. ये मैच रात 8:15 से शुरू होगा. वहीं अभय सिंह ने कल सेमीफाइनल में मिस्र के करीम एल हमामी को 3-1 से हराया था और आज उनका मुकाबला फाइनल में होना है मिस्र के करीम एल टार्की के साथ. ये मैच शाम 7:15 शुरू होगा.
And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति का स्मरण कर रहे हैं, जिनका निधन 28 मार्च 1943 को हुआ था. मद्रास प्रेसिडेंसी के एक अग्रणी कार्यकर्ता सत्यमूर्ति मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री और भारत रत्न के कामराज को गढ़ने वाले माने जाते हैं.
सत्यमूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1887 को तमिलनाडु के पुदुकोटई में हुआ था. पेशे से वकील सत्यमूर्ति बहुत छोटी उम्र से ही राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित थे. बाद में वे इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए. 1919 में कांग्रेस ने उन्हें ब्रिटेन में रॉलेट एक्ट और मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधारों का विरोध करने के लिए अपना प्रतिनिधि चुना.
सत्यमूर्ति सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के साथ स्वराज पार्टी में शामिल हो गए. 1930 में उन्हें मद्रास में एक मंदिर पर तिरंगा फहराने की कोशिश के लिए गिरफ्तार कर लिया गया.
सत्यमूर्ति ने 1937 में मद्रास विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. 1939 में वे मद्रास के मेयर बनाए गए. महापौर के रूप में काम करते हुए उन्होंने शहर में पानी की कमी दूर करने के लिए बूंदी जलाशय का निर्माण करवाया.
विभिन्न समाजसेवी संगठनों के स्वयं सेवकों की मदद से शहर के लिए सौंदर्यीकरण योजना लागू करने वाले वे पहले व्यक्ति थे. 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर नागपुर जेल भेज भेज दिया गया। जेल का कठोर जीवन उनके स्वास्थ्य पर भारी पड़ा और 28 मार्च 1943 को उनका निधन हो गया। सत्यमूर्ति एक जन नेता थे जो हमेशा आम जन के हितों के लिए काम करते रहे। इस
और अब जानी मानी हस्तियों को याद करते हैं।
First, we'll begin with Virginia Woolf, the novelist, English writer, whose novels, through their non-linear approaches to narrative, exerted a major influence on the genre. Well, she'll best known for her novels, especially, let me name two of them, Mrs. Dalloway and To the Lighthouse, and she also wrote pioneering essays on artistic theory, literary history, and women's writings and the politics of power. Well, she experimented with several forms of biographical writing and composed painterly short fictions.
बिल्कुल। और अब आज पुण्यतिथि है संगीतकार, लेखक, अभिनेता और फिल्म निर्देशक श्रीनाथ त्रिपाठी, या कहें SN त्रिपाठी की। जब भी हम सरगम, शहद जैसी मिठास और शास्त्रीय सेमी क्लासिकल धुनों पर सुंदर नृत्य की बात करते हैं तो हमें SN त्रिपाठी का ख्याल आता है और उनके जो संगीत से सजे जो खूबसूरत गीत है वो हमें याद आ जाते हैं। चाहे हम ले ले नैन का नैन चुरा कर ले गई, जरा सामने तो आ छलिए, ना किसी की आंख का नूर हूं, तो हम आगे बढ़ने से पहले उन्हीं के द्वारा संगीतबद्ध ये गीत सुनते हैं।
छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है।
Well, SN Tripathi, man of many parts and talents and many creative artists, well, they have achieved greatness and immortality in the Indian film industry, but only a few have displayed the range of versatility and ease the way he did, rightly so.
बिल्कुल, संगीत निर्देशक होने के अलावा उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, गाने गाए, हालांकि 50 के दशक के बाद वो काफी कम हो गए और लगभग ठहर गए, लेकिन उन्होंने कहानी और संवाद भी लिखे। कह सकते हैं SN Tripathi बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे।
आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं।
Now let's talk about actor, singer, music composer and director. Well, he's known for his works in Telugu cinema, Tamil cinema and also Telugu theatre, Chittu Nagaya. Well, he was one of the first multilingual filmmakers in India, and in the year 1965, he became the first actor from the South to receive the Padma Shri in arts for his contributions to the Indian cinema.
और आज जयंती है फिल्म निर्देशक इरुपम वीडू ससिधरन, यानी आई वे ससि की। उन्होंने तमिल और हिंदी भाषाओं के अलावा मुख्य रूप से मलयालम में 110 से अधिक फिल्में बनाई। 2015 में उन्हें मलयालम सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार जेसी डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अक्सर पथ प्रदर्शक के रूप में वर्णित ससि ने 1970 से 1990 के दशक तक मलयालम सिनेमा के परिवर्तनकारी काल के दौरान अपनी पहचान बनाई। उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। 1982 में उनकी एक फिल्म थी आरुदम, उसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। राष्ट्रीय एकता पर यह फिल्म थी, इसके लिए उन्हें नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म दिया गया था। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये बहुत ही सुंदर गीत।
கடல் போலே சரல் கால முகில் போலே ஏகாந்தமே பூஞ்சித்தில்.
Let's talk about another novelist now, Anthony Powell. Well, he's best known for his 12-volume work, A Dance to the Music of Time, which was published between 1951 and 1975. And it is on the list of longest novels in English. It was really long. And his major works has remained in print continuously and has been the subject of television and also radio dramatizations. Well, today we are also remembering William Christopher Handy, one of the many musicians who played the distinctively blues music. He did not create the blues genre, but was one of the first to publish this music in the blues forms, thereby taking the blues from a regional music style and then popularizing it.
¶¶
और आज जन्मदिन है अक्षय खन्ना का, जाने माने अभिनेता है, कई बेहतरीन फिल्में की हैं, बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर हैं, हर तरह का किरदार उन्होंने निभाया, कह सकते हैं बॉर्डर में अगर आप उनकी अदाकारी देखें, हमराज में उनका नेगेटिव रोल देखें, हलचल में उनकी कॉमेडी देखें, और अभी जो उनकी छावा फिल्म आई है जी हाँ, उसमें उनकी अदाकारी भी बहुत खूब रही है।
दे ऑडियंस हैज अप्रिशिएटेड हिज वर्क अ लॉट एंड फिल्म मेकर्स दे रिस्पेक्ट हिज डेडिकेशन यू नो टू द क्राफ्ट एंड ऑफन साइटिंग हिज एबिलिटी टू एलिवेट इवन द सिंपलेस्ट ऑफ रोल्स विद हिज स्टुपेंडस स्किल्स।
और अब समय कह रहा है अपने श्रोताओं से अनुमति ली जाए, तो प्रियंका अरोड़ा और शगुन चोपड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार, नमस्कार।